जब अल्लाह ताला खुद भी तो इनको बता सकते थे सारे नाम के ये हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काल या आदम अम्बिहुम बि अस्माए, ए आदम इनको इन चीजों के नाम बताओ। वही वाली चीजें हैं ना जो मैंने आपको बताया, बाज कहते हैं कि इंसानों के थे नाम सारे, और बाज कहते हैं कि नहीं उसी और भी चीजें थी बाहर, कैफ जो भी जितनी चीजें थी सबके नाम सिखा दिए थे ना। तो एक हाँ मैं आपको ये बता रही थी, एक चीज थी ना कि अल्लाह ताला ने उन चीजों को सामने आदम अलैहिस्सलाम के किया और फिर सिखाया, हो ये भी हो सकता है अल्लाह ने दिल में डाल दिया हो उनको उनके सारे चीजों के नाम। आप देख लेना मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहली बात आदम अलैहिस्सलाम ने क्या की थी, सबसे फर्स्ट थिंग जो ही सेड जब अल्लाह ताला ने उनको बनाया, कि जब उनकी रूह उनकी नाक में डाली गई तो उनको छींक आ गई, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने सिखाया था ना उनको, तो इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है, अर्रहमान अल्लम अल इंसान, अल्लाह सिखाता है। इल्म के लिए दुआ भी सिखाई गई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है कि मेरे से मांगो इल्म। मसनून दुआ भी है इल्म नाफे के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्म नाफियान, अल्लाह नाफे इल्म मुझे सिखा। तो ये तो मसनून दुआ भी है, कुरानी दुआएं भी इस पे है। तो इसलिए हमें भी अपने लिए ये चीज, ये ही नहीं कहते रहना चाहिए मुझे आता नहीं है मेरा हाफजा कमजोर है, अल्लाह से मांगा करें ना। कितनी दफा दुआ करते हैं ये, अगर नहीं आ रहा या नहीं हो पा रहा आपसे तो आप मुझे बताएं दिन में कितनी दफा दुआ करते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, कितनी दफा कहते हैं ये, भूल जाते हैं ना ये दुआ करना, फिर कैसे आएगा। इस दुआ को अपना वजीफा बना लें, अल्लाह सिखा देगा आपको भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अब ये फरिश्तों को दिखाना था ना कि देखो ये जो तुम कहते हैं ना ये खून बहाएगा ये फसाद करेगा, तो देखो ये जो इसकी फजीलत है ये देखो तुम, है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि बताओ इनके नाम, फलम्मा अम्बा हम भी अस्माएं, फिर जब उसने बता दिए नाम उनके, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजें क्लियर कर दी, सब नाम बता दिए, ये तो अब पता चलता है ना इस इल्म की वजह से वो खिलाफत के अहल हुए, ये इल्म था। आज देखो इल्म की कोई कदर ही नहीं है, सारे सलाम है तो बस ये पैसे को, कि पैसा किसी के पास है चाहे उसको कोई इल्म, और इल्म सिर्फ नाम क्या रह गया, डिग्रियों का नाम, चाहे अकल उसको कुछ समझ हो ना उसके पास ये डिग्री मेरे पास इल्म आ गया। इल्म शऊर का नाम है, इल्म हिकमतें आने का नाम है, क्या इल्म के लिए इंसान को हरीस होना चाहिए कि मुझे और इल्म मिले। हम कहते हैं मुझे लेके मिलेगा क्या, कितने की नौकरी मिलेगी ये इल्म लेने से, अच्छा और ये वाला लूं तो फिर कितने की मिलेगी, और फलाना वाला लूं तो कितने की मिलेगी, यानी हमारे लिए इल्म क्या रह गया, वो भी इसीलिए लेते हैं कि बस पैसा कमाया जाए, ठीक है। और दूसरे हमारे पास क्या है इल्म है, मैं बड़ा इल्म ले रही हूँ, क्या इल्म ले रहे हैं, सारा दिन फोन के ऊपर वो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो देखते जाएंगे ये हम इल्म ले रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो देखते जाएंगे ये इल्म आ रहा है, ये इल्म थोड़ी, ये तो इल्म के सोर्सेज थोड़ी है कि किसी ने कहा क्यू टीवी में देखती रहती हूँ, चलो मैंने मुझे क्लासें लेने की क्या जरूरत है, मैं बस वो टीवी देखती रहती हूँ, ये इल्म के सोर्सेज थोड़ी है। कोई वीडियो उठा के बना के झूठी सच्ची जहां से मर्जी किसी तरह भी वायरल कर देता है, बस उसको समझते हैं ये इल्म है, ये इल्म नहीं है। सबसे बेसिक और जो रूट है वो है ये कुरान, पहले भी आपको कुरान करीम की फजीलत में बताया था कि इस कुरान का इल्म कैसा है बाकी उलूम के मुकाबले में, ये मैं बता चुकी हूं आपको। तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि आदम अलैहिस्सलाम खिलाफत के अहल हैं, काला फरमाया अल्लाह ताला ने, ये काला किस तरफ है, उसने फरमाया किस तरफ जा रही जमीन, उसने अल्लाह ताला ने, अलम क्या नहीं, अकुल लकुम अकुल मैंने कहा, लकुम तुम्हारे से, इन्नी आलमु गैब अस्समावाति वल अर्द, कि मैं जानता हूं गैब आसमानों का भी और जमीन का भी, मुझे पता है ना आसमानों के भी गैब और जमीन के भी गैब, और वाकई अल्लाह ही को पता था ना कि आगे क्या होना है, आगे इस इंसान ने क्या क्या करना है, और ये कैसी मखलूक है जो कि फरिश्ते नहीं जानते थे। वा आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं ये भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो, क्या छुपाया था फरिश्तों ने? जाहिर तो जो किया वो आपके सामने आ गया इस आयत 30 में, लेकिन छुपाया क्या था? एक तो वो बात मैंने जो आपको बताई कि आपस में उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा तो वैसे वो इल्म वाला नहीं हो सकता, दूसरा उन्हीं के अंदर इबलीस भी था और इबलीस दिल में तकब्बुर छुपाए हुए था। और उस इसके बारे में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो वो उसने कहा था कि ये कोई चीज नहीं, अगर इस पे मुझे मुसल्लत किया गया मैं तो उसको बर्बाद करके छोड़ दूंगा। तो वो, और फिर जो उसके दिल के अंदर हसद पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से, वो भी अल्लाह ताला जानता था। और किबर अगर उसके दिल में जो था वो भी अल्लाह ही को पता था, वो सब चीजें छुपी हुई थी, वो कोई जानता नहीं था। अभी हकीकत खुलेगी ना, अल्लाह ताला, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला इंसान की हकीकत को खोल के रख देता है। ये जब उसके दिल में कोई चीज छुपी होती है वो किसी दिन सामने आ ही जाती है, और ये बहुत डरा देने वाली है। तख्तमून, जो भी हमारे दिलों में दिमागों में चल रहा होता है समझ लेना चाहिए, जो तुम छुपाते हो वो सब अल्लाह ताला को मालूम है, उससे छुपा हुआ नहीं है। और कुन तुम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी छुपाते रहे हो, पीछे भी जितना भी इबलीस ने जो भी इसके दिल के अंदर था जो किबर था, वो कोई फरिश्ता भी नहीं जानता था, वो तो अपनी तौर पे तो वो नेकों में ही था ना, कि वो भी फरिश्तों के बीच में रहता था, लेकिन उसके अंदर कितना फसाद था वो अल्लाह ताला को पता था। तो जो तुम छुपाते हो, जो तुम जानते हो, अच्छा ये बातें हो गई, फिर ये भी अल्लाह ताला को पता था कि ये कितना फसाद करेगा आगे जाके। तुम ये सोचते हो ना, ये इंसान फसाद करेगा, ये खून बहाएगा, और ये जो तुम्हारी सफों के अंदर छुप के बैठा हुआ है ये कितना फसाद करेगा और ये कितना शर वाला है। देखिए उसको शर कितना है कि कियामत तक नहीं खत्म होने वाला, वो कभी तौबा नहीं करेगा, उसका शर इतना है कि वो थकता नहीं है कि इंसानों को भटका भटका के, और आखिर वक्त तक गिव अप नहीं करता, गुमराह करता रहता है, कितना शर है उसके अंदर। तो वो फरिश्ते कह रहे थे ये इंसान शरीर होगा, इंसान का शर क्या, ये तो जो तुम्हारे बीच में छुप के बैठा है इसका शर कितना। ठीक है, तो ये तुम जो छुपाते हो वो भी अल्लाह को पता है। अच्छा, अब एक और ऑनर जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया, पहला ऑनर क्या था? इल्म दिया। तो पहला ऑनर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो अल्लाह ताला ने उसको इल्म अता फरमाया। और दूसरा ऑनर, वह इफ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, और जब कहा हमने फरिश्तों से सजदा करो आदम अलैहि सलाम को, फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया। फा से पता चलता है कि उसी वक्त सजदा कर लिया उन्होंने, ऐसे नहीं कि हम सोचेंगे अभी, अच्छा पहले हम कन्विंस तो हो जाएं, पहले हम मशवरे तो करें, नहीं, फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। देखिए अल्लाह ताला ने, एक ये भी बात यहाँ पे देखें समझ आती है ना, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों ने जो कंफ्यूजन अपनी जाहिर की थी, अल्लाह ताला ने किस तरह उनको मुतमईन किया ना, उनके सवाल के कैसे जवाब दिए, यानी किस तरह प्रैक्टिकली उनको दिखा दिया कि देखो तुम्हारी बात सही नहीं थी। ये नहीं उनको किया कि तुम कैसे ये कह सकते हो और तुम बस खत्म, अब तुम्हारा नामो निशान खत्म, क्यों तुमने एक बात क्यों की, नहीं, अल्लाह ताला ने उनकी बात का जवाब, इसमें भी अल्लाह की कितनी हिकमत है ना, कि वो लाजवाब हो गए कि देखो उनको दिखा दिया कि अगर तुम इस चीज का इल्म नहीं रखते, ये जो चीजें हैं तुम्हारे सामने पड़ी हुई, तो तुम्हें कहाँ पता है कि फ्यूचर में क्या होगा और ये इंसान क्या क्या करेगा, है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको सेटिस्फाई किया, और हमें भी ये होना चाहिए कि जब हमसे हमसे भी कोई सवाल करे, मसलन है हमारे बच्चे सवाल करते हैं, तो हम उनको स्नब ना करें कि नहीं 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 ये सवाल नहीं तुम कर सकते, ये कैसा, नहीं, उनकी बातों का जवाब उनको दे, उनको सेटिस्फाई करें। अगर हमने उनको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो यही सवाल जाके गूगल पे करेंगे, वो यही सवाल किसी और से जाके करेंगे जहां पे शायद हम कभी ना चाहते हो कि वो वहां जाके फंसे, ठीक है। मगर हमें चूंकि खुद ही नहीं पता होता ना, तो हमारा वक्त तो गुजर गया जो हम खामोश रहे, हम लोगों ने ऐसे सवाल नहीं किए अपने पेरेंट्स से। लेकिन आज के बच्चे बहुत से ऐसे सवाल करते हैं, तो माओं को समझ होनी चाहिए कि कैसे इनको जवाब देना। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को बता सकते हैं और समझा सकते हैं उनको, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई आर की बात नहीं है और क्वेश्चन करने में कोई मसला नहीं है, और हमें भी इसको पॉजिटिव लेके उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसमें आर नहीं समझी कि इनको क्यों मैं इनके सामने करूं, ठीक है, ये समझते हैं जो मर्जी समझते रहे, नहीं। अब देखें कि अल्लाह ताला ने इस इल्म की बदौलत उनको कहा कि फरिश्तों अब सजदा करो आदम के लिए, और सबने सजदा कर लिया। यहां से एक और भी मुफस्सरीन ने बात निकाली, उन्होंने कहा ली का मतलब है यानी आदम की वजह से, ली ये सबब वाला है। बाज मुफस्सरीन ने, चूंकि ये भी तफसीरों में लिखा हुआ है तो मैंने कहा आपके सामने रख दूं, कि आदम की वजह से सज्दा करो यानी अल्लाह को ही उन्होंने सज्दा किया, लेकिन आदम की वजह से, कि अल्लाह ताला ने देखो कि कैसी एक मखलूक की पैदा की है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये सज्दा तकरीमी था, यानी सज्दा वो वाला नहीं था इबादत वाला सज्दा, बल्कि ये एक और सज्दा है जो किसी की ऑनर देने के लिए, इज्जत देने के लिए। पुराने जमानों में बादशाहों के भी आगे ऐसे झुक झुक के जाते थे ना वो, तो ये सज्दा पहले जायज था, लेकिन फिर आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको भी, उनकी शरीयत के अंदर भी ये जायज था, इसीलिए उनके भाइयों ने सजदा किया था। उसके बाद फिर ये सजदा इस जमाने के बाद फिर हराम हो गया, फिर उसके बाद कोई किसी को सजदा तकरीमी नहीं कर सकता। इवन ये कि झुक झुक के किसी के पैर छूना या किसी के आगे होना, इवन उलमा ने ये भी मकरू किया है कि आप जब किसी को सलाम करते हैं तो आप थोड़ा सा झुक जाते हैं ना सलाम करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए। तो ये क्या ना, ऑनर के लिए इंसान हमेशा झुकता है, तो ये ऑनर दिलाया गया आदम अलैहिस्सलाम को। तो उलमा ने कहा इस तरह का जरा सा झुकना सलाम करने के लिए, ये भी फरमाया मकरू है, नापसंदीदा है, ये भी नहीं करना चाहिए। इंसान का सर झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुके, बस, चाहे वो रुकू की पोजीशन है, चाहे वो झुकने की कोई भी पोजीशन, क्योंकि उसमें ताजीम भी है, इबादत भी है। तो हमारी शरीयत में नाजायज है ये, जो आज के दौर में आप कई वीडियोस में देखते होंगे कि पीरों फकीरों उनके आगे लोग झुक झुक के जाते हैं, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे ऐसी गुमराही से, कि उसके बाद पीछे भी पलटते हैं, उनके तरफ पीठ नहीं कर सकते, फिर भी झुके झुके ही पीछे जाते हैं। मतलब मुझे खुदा खौफ ही नहीं है कि कैसे लोग हो कि जो सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, कि सहाबा ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना चाहा था, कि एक सहाबी आए हैं देख के वहां से कि भाई वहां लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, उन्होंने कहा या रसूल्ला आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें, वो अपने बादशाहों करते हैं, हम आपको क्यों ना करें। आपने फरमाया नहीं, सजदा किसी के लिए जायज नहीं, अगर किसी के लिए जायज होता तो मैं हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे, अगर जायज होता वो भी, तो लेकिन जायज है ही नहीं तो कोई भी नहीं किसी को कर सकता। अब कई दफा सवाल करते हैं लोग, ये कराटे हैं, ये सीखते हैं, इसमें झुक झुक के वो ऐसे करते हैं, तो फिर अब हम क्या करें? तो उनको कहें कि हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन के अंदर ये जायज नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं करेगा। हम इतना डरते हैं ना, आए वो उन्होंने कह दिया, अब उनका तो ये तरीका है, हम कैसे कहें? नहीं, आप बताएं, आप बताएंगे नहीं तो उनको क्या पता चलेगा, उनको तो नहीं पता ना। तो हमें जब ये समझ है कि हमारे दीन में ये नाजायज है, इस तरह कई कल्चर्स में है कि अपने बुजुर्ग हैं तो उनके आगे बिल्कुल वो तकरीबन रुकू की पोजीशन में चले जाते, तो ये जायज नहीं है। ये सर झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने आगे झुका के देखो कितने सारी जगह झुकने से हमें महफूज रखा, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, ये पेशानी कहीं नहीं झुकेगी, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। बादशाह है, चाहे वो कोई आलिम है, चाहे कोई पीर फकीर है, चाहे कोई भी है, जब नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम के सामने नहीं झुक सकते तो और की कोई किस काबिल है। तो इन चीजों को समझे कि हमारी शरीयत में नाजायज है, ठीक है। और इसी से किसी की गुमराही का आपको पता चल जाएगा, जो अपने लिए सज्दे करा रहा होगा कि ये आदमी खुद कितना गुमराह है जिसको ये बात नहीं पता। अगर अगर ऐसी चीज होती तो सबसे पहले सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने महबूब थे, सबसे पहले सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से सज्दा करते। लेकिन अगर वहां नहीं है तो ये आपके पास सबसे बड़ी दलील है कि फिर कोई सज्दे के लायक नहीं है और सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो सब ने सज्दा कर दिया सिवाय इबलीस के। यहां से फिर उसकी खबासत सामने आई, वो जो अंदर छुपा हुआ चोर था ना, वो सामने आ गया। अब उसने क्यों नहीं सज्दा किया, क्या प्रॉब्लम था उसको? अब उसने इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकबर चाहा। देखिए ना, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें इबलीस के भी तो सामने हो रही थी ना, कि भाई अल्लाह ताला ने नाम पूछे ये किए, उस वो कन्विंस नहीं हुआ। बाकी सब देखे कन्विंस हो गए, उन्होंने कहा ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना सुभाना का, उन्होंने कहा ला तू अलीम है हकीम है, वो इतनी अच्छी तरह समझ गए, उन्होंने जरा देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा हम सज्दा कर। लेकिन जब खबासत अंदर हो ना तो फिर वो जाहिर हो ही जाती है। अब इबलीस के अंदर चूंकि तकब्बुर था, वो थ्रू आउट कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन वो छुपा रहा क्योंकि जाहिर है इसमें तो कहीं नहीं पता चलना था। जब हुक्म हुआ सजदे का, तो अब अल्लाह ट्रायल्स जिंदगी के अंदर लाता है, चेक करता है इंसान को, ठोक बजा के देखता है। दावे तो बहुत है लेकिन है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत अरसे से ये इबादत कर रहा था फरिश्तों के साथ मिलके, तो उन्हीं के स्टेटस का हो चुका था। तो जब अल्लाह को लेकिन पता है ना कि अंदर किसी के क्या है, कोई चाहे बन बन के जितना भी दिखाए अल्लाह को पता है। अब वो कन्विंस नहीं हुआ, सारे कन्विंस हो गए। इससे पता चलता है कि बाज लोगों को आप दलीलें दे दो, बाज लोगों को आप सामने प्रूफ ले आओ, बाज लोगों को आप कितना भी कायल कर लो, कुरान हदीस उनके सामने रख दो, जिनके अंदर बुराई होती है और उन्होंने कहा होता है अंदर तकब्बुर होता है ना कि मैं बड़ी चीज, मैं कैसे मान जाऊं, मैं तो नहीं मानती, वो कभी नहीं मानते। ये नहीं होता कि हक में कोई कमी होती। अब इनके देखे सारे फरिश्तों ने मान लिया, इसने नहीं सिर्फ माना। तो बात कमी हक में नहीं है, कमी उस बंदे के अंदर होती है, वो खुद को बड़ा समझता है, मैं झुकूं कैसे, मैंने अगर कह दिया कि हाँ मैं कायल हो गई, मैंने मान लिया, तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ अंदर होता है, इसलिए समझ नहीं आती। इसलिए आप जितना मर्जी समझाने, तो ये ना समझे कि सारी दुनिया समझ जाएगी जब आप समझाएंगे, दलायल देंगे और आप कन्विंस करेंगे लोगों को, तो पता नहीं उसने समझ ही जाना है। नहीं समझते, जिनकी शैतानी सिफात होती है, जिनके अंदर ये वाली सिफत खास तौर पे बड़ाई की, वो कभी भी नहीं समझते। तो उसने रिफ्यूज कर दिया साफ है। और अबा जो है ना, अबा ये कोई आम इनकार नहीं है, शिद्दत के साथ इनकार करना, इसमें शिद्दत है। उसने कहा मैं तो कभी भी नहीं कर सकता, मैं तो नहीं करूंगा, बस तक बारा। और उसने बड़ाई चाही अपने लिए, उसने बड़ा बनना चाहा, यानी बड़ा तो नहीं है लेकिन दिल में चाहत है बड़ा बनने की। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, वह कान अमीन अल काफिरीन, और वो हो गया काफिरों में से, इनकार करने वालों में से। काफिर कैसे हो गया? हम तो काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता, वो कैसे काफिर हो गया? वो तो अल्लाह को मानता है, अल्लाह तला से बात भी करता है, अल्लाह से दुआ भी करता है कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, सारी बातें हुई हैं उसकी। वो तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो अल्लाह को नहीं मानता। उसने अल्लाह के एक हुक्म का इनकार किया, अमली काफिर हो गया। अल्लाह के हुक्म को कहना कि मैं इसको नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि नमाज है, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी कोई बात अगर करता है, या मैं नहीं मानती कि ये कोई ज़कात वगैरह है जरूरी है, या मैं नहीं मानती फलां अल्लाह की बात को, मैं मानती नहीं, ये मैं नहीं करती वो एक अलग बात है, या मेरे से नहीं हो पाता ये एक अलग बात है। ये जो कह देना होता है ना, मैं नहीं मानती, जो मर्जी कर लो मैंने नहीं माना, ये है जो इंसान को अमली काफिर बना देता है, कि इंसान यानी कुफर के अंदर चला जाता है ना। और ये देखे कहां था इबलीस, और कहां पहुंच गया मिनल काफिरीन। और ये इतनी डरा देने वाली बात है, क्योंकि कुर्तुबी लिखते हैं अपनी तफसीर के अंदर कि इबलीस ने अल्लाह की इबादत 80,000 ईयर्स की थी। 80,000 ईयर्स वो अल्लाह की इबादत करता रहा था, मगर एंड क्या हुआ, एंड क्या हुआ, इतना जोर से गिरा, इतनी ऊपर जाके कि फिर संभल ही ना सका। इसीलिए इंसान को हमेशा डरते रहना चाहिए। ये नहीं कि जो आज मेरी हालत है ईमान की वैसी ही रहनी है। हमें नहीं पता हमारी मौत के बाद क्या है। मुझे खुशकिस्मत लगते हैं वो लोग जो ईमान पे दुनिया से जाते हैं, जो नेकी पे दुनिया से जाते हैं, कहते हैं वो बहुत बहुत खुशकिस्मत है। क्यों? इसलिए कि उनका तो मामला उस पर क्लोजर हो गया ना, हमारे अभी क्लोजर का कोई पता नहीं है। हमारा क्लोजर किस पे होगा, हमारा खात्मा किस पे होगा? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार उनके खात्मे पे है। कि आप एंड कैसे करते हैं? अब देखें, बहुत अच्छा आप करते रहे, जब एंड आया आखिरी पारे पे आए, सारा छोड़ छाड़ के बैठ। आपने जो काम शुरू किया होता है उसको जब तक मुकम्मल नहीं करेंगे, आप देखें कोई भी काम है, आप दुनिया का ही ले लें, आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आपको कुछ और ख्याल आ गया, छोड़ के वहां से चले गए, आधा पका आधा कच्चा है, किसी के खाने के काबिल होगा नहीं। कोई भी काम आप ना एंड तक पहुंचाते हैं। एक बच्चा सारा साल स्कूल में पढ़ता रहा, जब इम्तिहान का दिन आया तो गया ही नहीं स्कूल, क्या होगा उसका? तो हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है कि हमारी मौत किस हालत में आती है। चाहे सारी जिंदगी नेकियां करते रहो, अगर वो टाइम पे इंसान भटक जाता है, उस टाइम पे इंसान अपना ईमान खो देता है, तो सब किया कराया गारत। और इसका देखिए सारी उम्र का कितने हजारों, चलो अगर 80,000 ना भी माने और कुछ कहें, फिर भी लंबी मुद्दत तक ऐसे ही नहीं, उसको ये इतना मकाम मिल गया था कि फरिश्तों में रहने लगा था, हालांकि वो तो जिन था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वो जिन्नों में से था, लेकिन फरिश्तों तक के स्टेटस तक कैसे पहुंचा, इतनी इबादत गुजारी के जरिए, इतनी इबादत थी उसके अंदर। मगर जब इबादत भी तकब्बुर पैदा कर दे तो इंसान फिर इबलीस बन जाता है। इबादत के साथ क्या होनी चाहिए, आजी आजी आजी। अगर इबादत ऐसी हो जाए कि दिमाग आसमान पे चढ़ गए हैं, हम तो आलिम बन रही हूं, आलमा बन गई हूं, दूसरों से ना सलाम करना ना दुआ ना कुछ, मैं तो पता नहीं क्या चीज हो गई हूं, मेरे तो बस मैं तो तहज्जुद गुजार, मैं तो तस्बीहां ही नहीं मेरी खत्म हो गई। उसके बाद इंसान के अंदर अपनी बड़ाई का एहसास आ जाए कि वो किसी को कुछ समझे ही ना, लोग मेरे पास आए, मैं तो यहाँ पे मुझे बिठाए, मैं तो अच्छा आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इतना बड़ा कारनामा किया, आपने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, मुझे मुझे आपने कोई अप्रिसिएशन ही नहीं दी, ये क्या है? ये वही है अपनी बढ़ाई, इसकी तारीफ क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हुई, इसको क्यों इतना स्टेटस मिल गया। अब उसको ये था कि देखा उस वक्त तक तो चुप रहा, ठीक है अपना चल रहा था, ठीक है फरिश्तों के अंदर बहुत बड़ा था उसको, उसमें भी उसके अंदर बड़ाई थी, अल्लाह को पता था, अंदर तो था ना ये चोर। लेकिन अब ये जाहिर हुई है जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, क्योंकि अब तकब्बुर से आगे क्या चीज ने जन्म लिया, हसद। जब तकब्बुर आता है तो हसद खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि फिर इंसान किसी को नहीं देख सकता कि कोई और वो भी बड़ा हो जाए, बड़ी तो सबसे मैं ही रहूं। अब वो हसद ने देखिए क्या किया फिर, कि उसकी वजह से वो नहीं, हसद किस बात पे था, आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज मिली थी जिसके ऊपर उसको हसद था? अभी तो उनको कुछ ऐसा नहीं मिला, इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया था, और कोई बादशाहत नहीं मिल गई थी कोई, बल्कि उनके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, खिलाफत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी का एक चीज है। लेकिन उसको ये है कि इसको क्यों इतना पूछा जा रहा है, इसको क्यों इतना ऑनर दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं, असल तो मैंने काम किए, मैंने इतने अरसे से इबादत की है। तो ये देखिए पहला कत्ल भी तो इसी वजह से हुआ था, इसलिए नहीं होता कि कोई माल जायदादें थी जो बटनी थी, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की नहीं हुई। सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया एक भाई ने दूसरे को कत्ल कर दिया, कि तुम्हारी क्यों कबूल हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनको कोई ज्यादा दो, उनका तो नहीं मसला था, बस ये बाप इसको क्यों ज्यादा पूछता है। तो हम समझते हैं ना, माल और स्टेटस की वजह से हसद होता है, ठीक है होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हसद जिस चीज से होता है ना, कि इसको क्यों इतनी अहमियत मिल गई, इसको क्यों इतना पूछा जा रहा है, इससे क्यों इतना प्यार करते हैं, इसका क्यों मकाम हो गया, लोग इसको क्यों पूछते हैं, लोग इसके आगे क्यों पीछे क्यों होते हैं। आप वो हैरत होगी कि माल से ज्यादा इसकी जेलसी होती है। और बाज दफा दीन वालों के अंदर, दीन के काम करने वालों में ये हो जाती है, इसको क्यों ग्रुप इंचार्ज बना दिया, मुझे बनाना चाहिए था, ये क्यों ऐसे हो गए, मुझे ये मकाम और मर्तबा मिलना चाहिए था, मेरे गुण गाए जाने चाहिए थे, मुझे पूछना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मैं इतना काम करती हूं, मुझसे कोई नहीं मशवरा लिया गया, इसकी क्यों तारीफें हो रही हैं, मेरी कोई कदर नहीं करता, मैं काम कितना करती हूं, मुझे मानते ही नहीं है। आप देख लें कि आज बहुत बड़ी बातें नहीं है, कोई पार्लियामेंटों की बातें नहीं हो रही, कोई यूएन में तकरीर करने की बात नहीं हो रही, छोटी छोटी जगहों पर जरा सी कुर्सी के लिए, जरा से ओहदे के लिए, जरा सी चीज के लिए कितना इंसान तकब्बुर का शिकार होता है और कितना हसद होता है उसके अंदर, कि उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और क्यों, किसी और को कुछ क्यों मिल गया, और तकब्बुर इतना भरा होता है। कल तक तो मैं खुद ग्रुप इंचार्ज थी, आज मैं किसी और को ग्रुप इंचार्ज मान लूं अपने ऊपर, और मैं जस्ट एक स्टूडेंट बन के उसकी बात सुनूं, ये कैसे होगा। कल तो मैं थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मेरी चलती थी, आज मैं किसी की सुनूं। तो ये चीजें जॉब्स में भी होती हैं, बहन भाइयों में भी होती हैं, कहीं आप देखें कई रिश्तों के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, और इसी ने शैतान को तबाह किया, और वो चाहता है कि हम तबाह हो जाएं इसी के जरिए, चाहे वो कोई दीन वाले हैं, चाहे वो कोई दीन वाले नहीं हैं, दीन के काम कर रहे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, सबके अंदर ये डालता है। इसी वजह से आज देखें आप, क्यों लोग एक दूसरे को काटते हैं, हम क्यों कहते हैं वो जो तो आजकल तो देखें क्या वक्त आ गया, कोई किसी को काट रहा है, उसको भी वो काट रहे हैं, दीन वाले भी एक दूसरे को काट रहे हैं, क्यों है, यही इस तकबारा और उसकी वजह से हसद तकब्बुर के, हम बड़े हम ज्यादा। हालांकि अगर तकब्बुर आ जाए इंसान के अंदर, तो ना उस इल्म का कोई फायदा है, ना उस मर्तबे का या कुर्सी या जो जो भी उसको मिला हुआ है उसका कोई फायदा है, अगर तकब्बुर आ जाए ना उस इबादत का कोई फायदा है, ना लोगों के जो फैन है, फॉलोइंग है, ये है, इसका कुछ फायदा नहीं अगर इंसान में तकब्बुर। अब उसकी तो बेटे देखें कितनी पहुंच हो गई थी, इबलीस भी पहुंचा हुआ था, जिसको हम कहते हैं ना पहुंचा हुआ, बड़ा पहुंचा हुआ है, तो इबलीस भी पता नहीं पहुंचा हुआ इतना पहुंच गया था कि वो तो फरिश्तों तक ही पहुंच गया था, वो उनके अंदर ही बैठता था उठता था, और जब ऐसी चीज हो अंदर तो फिर अच्छों की कंपनी ने भी उसको कोई फायदा नहीं दिया, और क्या उसको कहां से वो गिरा और कहां पहुंचा। तो कभी अपनी इबादत, अपने इल्म, अपने किसी अमल के ऊपर कोई तकब्बुर ना दिल के अंदर लाएं कि हम ये करते हैं, हम ऐसे, हम मैं ये मैं वो, नहीं, इंसान हमेशा झुका हुआ रहे। जो भी इंसान झुक जाता है ना, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के ये फरमाया, अगर हमें कोई स्टेज पे नहीं बुलाता तो हमारी कोई कमी नहीं आ जाएगी, कोई हमारा नाम नहीं लेगा तो कोई कमी नहीं आएगी, किसी की इज्जत में कोई कमी नहीं आती। तो ये, और दूसरी एक और बहुत अहम बात हमें जो पता चलती है, देखिए सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने सजदा किया ना, और किस वजह से, आपको मैंने बताया कि अब उन्होंने देख लिया आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म है, इस इल्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत मिली ना, ये पहला ऑनर उनको मिला। तो हदीस में आता है, आपने वो हदीस सुनी होगी, मैंने आपको इल्म की फजीलत में बताई भी थी, कि तालिबे इल्म के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, वो भी क्यों है, अब सजदा तो नहीं हो सकता लेकिन वो क्यों है, वो भी उनके इल्म की के ऑनर में, उसकी ताजीम में, कि ये इल्म के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी चीज है इल्म। तो अब देखें कि जब उसने
इनकार कर दिया। और तकबर, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो तकबर है ना, इसके बारे में हदीस में आता है। एक तो ये सबसे पहला गुनाह है, इसके बारे में हदीस में आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर होगा ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इतना छोटा सा भी तकबर, इतना इसी भी अपनी बढ़ाई का एहसास और मैं कोई चीज हूं, तो इसको निकालने की जरूरत है अपने अंदर से, इस पे वर्क करने की जरूरत है, आजी की जरूरत है। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, और कहा हमने। अच्छा अब ये एक सवाल है कि ये तकबर को निकालें कैसे, इसके ऊपर वर्क कैसे करें। ये भी अच्छी बात है कि कैसे इस तकबर का इलाज कैसे किया जाए। लेकिन जितना जितना इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास करता है ना, उसके अंदर से तकबर खत्म हो जाता है। जब उसको ये पता चलता है कि सारा कुछ तो मेरे पास लिए दिए का, मेरा अपना क्या, अगर इल्म है तो वो भी अल्लाह ने दिया है, अल्लाह चाहे तो छीन ही ले इस इल्म को, हिदायत है तो अल्लाह ने दी भी है। अगर मैं कोई करती हूँ, अब हमारे अंदर क्या तकबर आया था, जूं ही हमें कोई चार बातें क्यों ना आ जाए या हम कोई काम करने लगे, सारी दुनिया ऐसे लगती है बस बहुत ही हकीर और बहुत ही सारे गुनाहगार हैं, उफो ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे, तो इतना भी नहीं आता इनको, इतना भी नहीं पता इनको। नहीं, अगर आज मुझे दो बातें आ गई हैं तो वो मेरा कोई अपना कमाल नहीं, वो अल्लाह ने दे दी है। तो फिर तो जब हर नेमत को समझेंगे कि अल्लाह ताला की दी हुई है, और ये सारी नेमतें, चाहे वो मादी नेमतें हैं, चाहे वो कोई मानवी नेमत है जैसे हिदायत है या अकल है या समझ है या कोई हुनर है, चाहे सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, तो वो फिर बंदा खुद ब खुद आजिज हो जाता है ना, खुद ब खुद झुक जाता है कि मैं क्या हूं फिर, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। जैसे दुनिया में आए थे तो क्या थे, खाली हाथ थे, बदन पे कपड़े भी नहीं थे, तो ये सब तो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ। तो फिर अल्लाह के आगे झुके और इन चीजों का एहसास करे कि ये मैं ओन नहीं करता, तो फिर तकब्बुर किस बात का, बड़ाई किस बात की। जो इंसान फकीर हो और उसने मांगे तांगे की चीजें पहनी हो, वो तकब्बुर कोई कर सकता है? तो जितना ये एहसास ज्यादा होगा, फिर तकब्बुर खत्म होगा और दूसरे लोगों को हकीर जानना बंद कर दे। इंसान के अंदर आजी तभी आती है जब उसको दूसरे अपने से बेहतर मालूम होते हैं। ये नहीं कि मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूं, नहीं, मैं उससे तो अच्छी हूं, यही तो प्रॉब्लम था शैतान का। अना खैर उम्मीन, मैं बेहतर हूं इससे। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, और कहा हमने ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में। अब आप देखेंगे आगे जितना आया है ना, वो सारा ड्यूल में आया। यहाँ पे भी ड्यूल में आ सकता था, उसकुना तुम दोनों रहो, लेकिन कहा गया तुम और तुम्हारी बीवी। एक तो हमें यहाँ पे पता चला कि हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, और क्यों पैदा फरमाया इसके बारे में भी आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में जगह दी गई तो वो बिल्कुल अकेले थे। तो वो जाहिर है इंसान अकेला होता तो वो फील करता है ना, अच्छा नहीं उसको फील होता। तो अल्लाह ताला ने इनकी नींद में हजरत हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया। जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि एक औरत बैठी हुई है, पूछा तुम कौन हो, बताया कि मैं एक औरत हूँ, आपकी बीवी हूँ, आपके साथ रहने के लिए और आपकी तस्कीन का सबब बनने के लिए पैदा की गई। तो ये भी कहा जाता है फरिश्तों ने फिर पूछा कि इनका नाम क्या है, इनका नाम बताएं। हज़रत आदम ने फरमाया हव्वा, उन्होंने कहा इस नाम को क्यों, क्या वजह है इस नाम की, तो फरमाया ये एक जिंदा से पैदा की है ना, हई हई से। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी अब इत्मीनान से जन्नत में रहो, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा, और खाओ पियो इसमें से तुम दोनों जो भी खाना पीना चाहो जितना चाहो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा अब या ये मैं आपको बता रही थी कि उसको ना भी कहा जा सकता था, लेकिन उसको अंत व ज़ौजु का क्यों कहा गया, तुम और तुम्हारी बीवी, क्योंकि इंसान की जो आदमी की जो बीवी होती है वो वहीं रहती है जहां पे आदमी रहता है, उसका घर वही होता है, औरत का घर वही है जो आदमी का घर, वो उसके साथ मूव होती है, आदमी नहीं उसके साथ मूव होता, अंत व ज़ौजु का। और खाओ पियो, यानी अल्लाह ताला ने उनको पूरी कुली फरागत दी, जन्नत पूरी की पूरी उनका घर थी। फिल जन्ना नहीं कहा कि जन्नत में एक जगह यहां पे तुम रहो, बल्कि जन्ना सारी जन्नत ही तुम्हारा घर है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? जीम नून, नून से है जिन, ये भी इसी से है, जिससे जिस रूट से जन्नत है उसी से जिन है। क्योंकि जन्नत कहते हैं छुपी हुई चीज को। अब ये इतनी ज्यादा दरख्तों से घिरी हुई है, ये छुप गई है, तो इसलिए उसको जन्नत कहते हैं। तो वहां पे बहुत सारे दरख्त। अच्छा, एक उस्कुन भी, उस्कुन जो है ना, जैसे चलते चलते आप किसी जगह पे सुकून लेने के लिए सेटल हो जाए, उसको कहते हैं। यानी हरकत करते करते कहीं स्टे करें, जैसे आपको कहते हैं हर रूफ पे कई सुकून लगे हुए, तो आप वहां पे क्या करते हैं? मुस्तकर, मुस, अब आप वहां पे रुके ना, तो ये है सुकून। अब इसी से सकना, इसी से उसकुन, सुकून लो यहाँ पे, यानी सकीनत इख्तियार करो यहाँ पे। और ये कभी हमेशा की नहीं होती, फिर आगे चलना होता है, ठीक है ना? तो इससे भी पता चलता है कि उन्होंने यहीं नहीं रहना था हमेशा। अल्लाह ने उनको कहाँ के लिए पैदा किया था? ऐसा नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी गलती की वजह से कोई सजा के तौर पे कुछ जमीन पे भेजे गए। वो तो ये वाकया हुआ तो उसके बाद तो भेजा गया, लेकिन अल्लाह ताला ने ओरिजिनली उनको जमीन के लिए ही पैदा किया था, जमीन के लिए। ये नहीं फरमाया कि आपको जन्नत में रहने के लिए पैदा किया गया है, जमीन के लिए पैदा किया था कि यहाँ पे खलीफा बनाए। तो हम समझते हैं कि नहीं, वो गलती की वजह से आए, उसकी वजह से हम सारे सजा भुगत रहे। नहीं, ठीक है, जमीन में खिलाफत देनी थी और उसके बाद अल्लाह ने इनाम के तौर पे जन्नत रखी। और ये भी हमें पता चलता है ना, ये जो यहाँ पे, चलें फिर वो बाद में कभी बताऊंगी। वला तकरबा हादिही शजरत फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, और ना तुम करीब जाना इस दरख्त के, इस हादिही फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। एक तो ये देखें कि यहां पे अब जब कुला की बात आई, तकरबा की बात आई, फिर दोनों को कहा तुम दोनों खाओ जो भी, लेकिन इस दरख्त के पास तुम दोनों ने नहीं जाना। इससे एक बात पहली पता चली कि दोनों को इंस्ट्रक्शन थी। ये सारी इंस्ट्रक्शन आदम अलैहिस्सलाम को भी दी जा रही थी, उनकी बीवी को भी। और क्या कहा गया? दोनों इस दरख्त के पास नहीं जाना। इससे पता चलता है कि जब कोई अल्लाह का हुक्म आ जाए कि ये नहीं करना, तो उस वक्त ये कोई नहीं कह सकता नहीं, ये तो फिर मैंने उसकी वजह से किया, उसका कसूर है। जब अल्लाह के अहकामात हैं, तो मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जितने भी कुरान में अहकामात दिए गए हैं, जो जो सबके लिए हैं, वो सारे के लिए। कोई ये नहीं कह सकता मैं तो बीवी हूं तो इसलिए मैं तो मजबूर हूं, वो कहें बीबी हवा के जो है ना, आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा था इसलिए। अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया, तो सारे अहकामात जो कुरान पाक में हैं, जो जनरल सबके हैं, खास खास औरतों और मर्दों के अलग अलग भी हैं, लेकिन जो जनरल अहकामात हैं वो सबके लिए हैं। अब मसलन नमाज का हुक्म है सबके लिए, उसमें कोई औरत नहीं कह सकती मेरा शौहर ही नहीं मानता तो मैं क्या करूं, ठीक है? तो वला तकरबा। अच्छा, एक ये बात, हादिही शजरा, हाजी ही शजरा से क्या पता चला कि स्पेसिफिकली उनको बताया गया ये वाला। बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं चला, वहां पे तो इतने दरख्त थे जन्नत में, मुझे क्या पता। तो उनको खास तौर पर हाजा जो होता है ना, इशारा करीब का है, ये इसको बहुत अच्छी तरह मेक श्योर करा दिया गया कि समझ आ गई है यही वाला है। अच्छा, और ये नहीं कहा गया, आप नोट करें यहां पे, कि कुला मिनहा रगदन है सुचे तुम्हारा, वला ता कुला, ना खाना तुम सारों को बाफरागत जहां से चाहो, और ना खाना इस दरख्त से। आप नोट करें, ये वाली बात नहीं है, ना खाना नहीं है, ला तकराबा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान की ये कमजोरी है कि अगर वो किसी चीज के करीब गया तो उसमें पड़ जाएगा, वो कर बैठेगा, वो चीज उसको अट्रैक्ट करेगी और वो उसमें फंस जाएगा। आप देखें, गुनाहों की यही होती है ना, आप गुनाह का इरादा नहीं भी हो, लेकिन उस मजलिस में बैठ गए जहां पे कोई गुनाह हो रहा है, तो उसके अंदर फिर इंसान शामिल हो ही जाता है। नहीं, हम तो वैसे ही जा रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे। कितना मर्जी कहें, हम तो नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है, तो बुराई का यही होता है। बुराई शुरू में क्या होता है, बुराई की एक्सेप्टेंस आती है, फिर उसके बाद इंसान बुराई करता है। तो ये जब इंसान करीब जाता है उस चीज के, उसको एक्सेप्ट करने लगता है, फिर वो कर भी लेता है। आपको पता है कुरान पाक में वला तकरबु जिना है, जिना के करीब भी ना जाना, ये नहीं कहा गया जिना ना करना, करीब भी ना जाना, यानी जो रास्ते हैं उन पे भी ना चलना कि जिना तक पहुंच जाओ। और उनमें पहला रास्ता क्या है, बदनिगाही, नजर शहवत से डालना किसी पे, ये पहली चीज है, रास्ते का पहला स्टेप है। कहा गया इस पे भी नहीं जाना, यहां पे कहा गया उस दरख्त के पास भी ना जाना। देखिए कितनी इंस्ट्रक्शन थी क्लियर। यही तमाम गुनाहों के लिए, इसी बात को समझने, वाला तकरबा, ना ही करीब नहीं जाना है। और ये जो लोग सोचते हैं ना, हम तो बड़े मजबूत हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं, हम, मैं को पागल हूं, मैं को बच्ची हूं, मैं को ऐसे हूं, मैं तो, मुझे नहीं भला समझ है। नहीं, ये सब समझे ना धरी की धरी रह जाती है। तो शैतान ऐसे गलबा पाता है, वो ही काम करा देता है इंसान से। तो इसलिए अपने आप को उन चीजों के करीब ले जाने की जरूरत ही क्या है, जिस रास्ते पे, जिस जगह पे जाना ही नहीं, उस रास्ते पे भी जाने की क्या जरूरत है। फतकूना मिना जालिमीन, नहीं तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। तो जालिम क्या होते हैं, यानी जुल्म यही है कि इंसान अपनी जान के ऊपर जुल्म करता है। जुल्म क्या है, हकदार को उसका हक ना देना। और जुल्म क्या है, तो कोई जो चीज जिस जगह पे होनी चाहिए उसे हटा के कहीं और रख देना। और इन्होंने क्या जुल्म किया था अपने आप के ऊपर ना, वो वहां पे चले गए जहां पे उनको नहीं होना चाहिए था।